फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त वैशाली बिहानी और लेकर आई हूँ आज फिर कुछ नया ताना बाना। अमन एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह किराए से एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह 3 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और अभी तक उसकी एक बार भी सैलरी नहीं बढ़ी थी। वह बार बार सोचता कि बॉस से सैलरी के बारे में कहूं, पर हर बार संकोचवश वो कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन एक दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं बॉस से जरूर इस बारे में बात करूंगा। तो उसकी पत्नी ने भी अमन की हिम्मत बढ़ाई और हाथ में लंच थमाते हुए ऑल द बेस्ट कहा। ऑफिस पहुंचकर अमन ने सही मौका देखते हुए बॉस से अपने दिल की बात कह डाली। बॉस मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल अमन, कुछ दिन पहले हुई मीटिंग में ही हमने तय कर लिया था कि इस बार तुम्हें 30% की हाइक दी जाएगी। हम तुम्हें इस बारे में बताने ही वाले थे। कंपनी तुम्हारी लॉयल्टी और परफॉर्मेंस से खुश है। अगले महीने से तुम्हें बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने लगेगी। अमन को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी आसानी से उसकी बात मान ली गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑफिस खत्म होते ही वह खुशखबरी सुनाने के लिए वह अपनी पत्नी के मन पसंद रसगुल्ले खरीदकर घर से निकला। उसकी पत्नी आज अमन के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी थी। दूर से ही वह समझ गई कि अमन को सैलरी हाइक मिल चुकी है। वह अमन का वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। अमन गेट से अंदर घुसा। उसकी पत्नी एक सुंदर सी साड़ी पहने तैयार खड़ी थी। पूरा घर भीनी भीनी खुशबू में नहा रहा था। डिनर टेबल पर क्रॉकरी का नया सेट लगा हुआ था और बीच में एक कैंडल जल रही थी। खाने में हर वो चीज बनी थी जो अमन को बेहद पसंद है। और इन सब के बीच एक सुंदर सा कार्ड रखा हुआ था। अमन ने कार्ड उठाया और पढ़ना शुरू किया। डियर अमन, मुझे पता था कि जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम्हारी इस खुशी में मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये खुशबू, ये नई क्रॉकरी का सेट, ये डिशेस, ये कैंडल, ये सब तुम्हें यही बताने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I love you so much, तुम्हारी पत्नी। यह पढ़कर अमन मुस्कुराया और अपनी वाइफ को गले से लगा लिया और बोला, मैं अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ। यह कहते हुए अमन किचन से प्लेट लाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ये क्या, किचन के शेल्फ पर भी ठीक वैसा ही एक कार्ड पड़ा था जैसा उसने अभी अभी पढ़ा था। अमन ने फौरन कार्ड उठाया और पढ़ने लगा। उस कार्ड पर लिखा था, डियर अमन, क्या हुआ जो तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी वैल्यू इन छोटी मोटी हाइक से कहीं ज्यादा है। ये खुशबू, ये नया क्रॉकरी का सेट, ये डिशेज, ये कैंडल, ये सब तुम्हें यही बताने के लिए है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। I love you so much, तुम्हारी पत्नी। अमन की आंखों में आंसू थे। उसे पता चल चुका था कि उसके लिए उसकी पत्नी का प्यार उसकी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करता। वो तो बिना किसी शर्त के है। आज अमन का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। अब वह अपनी पगार बढ़ने से कहीं ज्यादा इस बात से खुश था कि उसके पास ऐसा कोई है जो उसे किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण स्वीकार करता है। मित्रों, मैं यही कहना चाहती थी आपसे कि लोगों को हमारे प्रेम, विश्वास और सपोर्ट की जरूरत तब सबसे ज्यादा होती है जब वो किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अक्सर हम उनकी सफलता में तो शामिल होते हैं, पर असफलता से सामना करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास एक भी शख्स ऐसा है जो हमें हर हाल में स्वीकार करता है, तो हम इस दुनिया का सहजता से सामना कर सकते हैं और कठिन से कठिन मंजिल को पा सकते हैं। और जानते हैं उस व्यक्ति को सबसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो है खुद किसी और के लिए ऐसा व्यक्ति बनना। इसलिए लाइफ में कुछ रिश्ते जरूर बनाइए जिन्हें आप पूर्णतः स्वीकार हो और बिना किसी शर्त शर्त या समर्थन के। आप पाएंगे कि आपके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना देना है, और आपकी सफलता या असफलता से नहीं। और यही एक मजबूत रिश्ते का रहस्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? मुझे जरूर सूचित कीजिएगा, और यदि कोई कमी रह गई हो तो वो भी जरूर बताइएगा, आगे हम ठीक कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। महाभारत में कर्ण ने पूछा कृष्ण से, कृष्ण आप ही बताओ मेरी क्या गलती थी? क्या गलती थी मेरी जो मेरी मदर ने मुझे छोड़ दिया जैसे ही मेरा जन्म हुआ? क्या गलती थी मेरी जो मैं एक बिन ब्याही माँ का बेटा बना? मेरे को द्रोणाचार्य ने एजुकेशन नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे सब कुछ सिखाया पर आखिर में श्राप दे दिया सब कुछ भूल जाने का, क्योंकि मैं शत्रु क्षत्रिय था। एक गाय मेरे से गलती से मेरे से मारी गई, और उसके जो गाय के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया जिसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया। फिर कुंती ने माँ ने जब मुझे बताया तब बताया जब उनको अपने बेटे बचाने थे, और मुझे जो भी मिला वो मुझे दुर्योधन की वजह से मिला। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं यदि मैं दुर्योधन का पक्ष लेता? तो कृष्ण जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि कर्ण मेरा जन्म तो जेल में हुआ था। मेरे जन्म से पहले मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा तो बचपन घोड़ों की आवाज, तलवारें, रथ, तीर कमान इनके साथ गुजरा है, पर मेरा सोचो, मेरा बचपन तो गायों के साथ, गायों के कोठे में, गोबर में, और मेरे जीवन पे हुए कईयों मेरी मृत्यु का इंतजार करते हमले, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने बचपन में, जबकि जब मैं चल भी नहीं पाता था। मेरी कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई एजुकेशन नहीं मिली, बल्कि लोग यहां तक कहते थे कि हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। तुमको तो तुम्हारे टीचरों ने सराहाया जब तुम पढ़ा करते थे, पर मेरा क्या, मुझे तो कोई शिक्षा मिली ही नहीं। मैंने तो ऋषि सांदीपनि का गुरुकुल तब गया जब मेरी उम्र 16 वर्ष थी। तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, मैंने जिसे उम्र भर चाहा वो तो मुझे मिली ही नहीं, बल्कि मैंने उनसे शादी करी जो या तो मुझे चाहती थी या जिन्हें मैंने बचाया। मुझे मेरी पूरी कम्युनिटी को, मेरी पूरे समाज को, यादव समाज को यमुना के किनारे से ले जाना पड़ा जरासंध की वजह से, और उनको बचाने के बाद भी मुझे क्या नाम मिला रणछोड़, मैं कायर कहलाया। फिर भी दुर्योधन जीतता है तो तुमको बहुत सारा क्रेडिट मिलेगा, पर यदि युधिष्ठिर जी जीतेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि ये युद्ध कराना और ये युद्ध की वजह से जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसका मुझे सिर्फ नाम मिलेगा, उसका ब्लेम मिलेगा। तो एक बात याद रखो कर्ण, कि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस कहानी का आप सार यदि देखेंगे तो इस सार जो कृष्ण जी ने सार बताया है इस कहानी का, कृष्ण जी के अनुसार ये सार जो है कि जिंदगी किसी के लिए भी फेयर नहीं है, किसी के लिए भी सच्ची नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं, हर कुछ पार्ट सभी के लिए अच्छा नहीं होता। दुर्योधन के साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ, तो युधिष्ठिर के साथ भी हुआ, पर क्या राइट यानी क्या धर्म है हमारा, ये हमारे दिमाग को पता होता है कि कितना भी जिंदगी हमारे साथ गलत क्यों ना हो जाए, कितने बार भी हमें अपमान क्यों ना सहना पड़े, कितने बार भी हमें वह सब ना मिले जो हमको मिलने का हक था, बट उसके बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ वी रिएक्ट, हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कर्ण से कि कर्ण इस तरह से शोकाकुल होना छोड़ो, जिंदगी में गलत होना, जिंदगी यदि आपके साथ गलत करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत रास्ते पे चलने का अधिकार मिल गया, आपको गलत रास्ते पे चलने का लाइसेंस मिल जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत टफ हो सकती है आपकी आपकी किसी पॉइंट पर जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो हमने कौन से जूते पहने हैं उससे तय नहीं होती, बल्कि हमने कैसे कदम उठाए हैं उससे तय होती। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी या प्रेरणा का एक स्रोत जो मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए? तो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, कहीं कोई गलतियाँ हुई होंगी तो मुझसे माफ़ कीजिएगा, मैं अगली बार सुधारने का प्रयास करूँगी। इस पर अपना फीडबैक, अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मैं वैशाली बिहानी, मिलती हूँ फिर आपसे।